हरे कृष्णा। तो आज से हम भगवद गीता का दूसरा अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं, और क्योंकि इस अध्याय में कुल मिलाकर 72 श्लोक हैं, इसलिए हम इस अध्याय को विभाजित कर इसका पाठ करेंगे। हम 40 श्लोक लेंगे हर हफ्ते, जब तक कि 40 श्लोक हम चर्चा नहीं कर लेते, और उसके पश्चात बाकी के 32 श्लोक उसके पश्चात। तो आज हम दूसरे अध्याय के 40 श्लोकों का पाठ करेंगे। संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विशिदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितं अनार्यजुष्टं अस्वर्ग्यं अकीर्ति करमर्जुन। क्लैब्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्वय उपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तो तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्मं अहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन। ईशु भी प्रतियोत्स्यामि पूजारावरिसूदन। गुरु न हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपि हलोके। हत्वार्थकामांस्तु गुरुनिहैव भुञ्जाय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। न चैतद्विद्म कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयु। यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। कार्पण्यदोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता। यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शादिमां त्वां प्रपन्नम्। नहि प्रपश्यामि ममापुनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम्। अवाप्य भूमाम सपत्न्यरिद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। संजय उवाच एवं मुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप। नयोत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तुष्णीं बभूवः। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन इव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विशिदन्तम् इदं वचः। श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासूनगतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः। न त्वेवाहं जातु नासम् न त्वं नेमे जनादिपा न चैव न भविष्याम सर्वे वयमतः परम्। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। मात्रास्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदा। आगमापायिनो नित्यास्तां स्थितिक्षस्व भारत। यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते। नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः। उभयोरपि दृष्टोऽन्तस् त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम् अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। अनंतवंत इमे देहा नित्य सोक्ता शरीरिणा अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद् युध्यस्व भारत य एनं वेति हन्तारं यस्यैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्यशाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदाविनाशिनं नित्यं य एनं अजमव्ययं कथं स पुरुष पार्थ कं घातयति हन्तिकं वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि सम्याति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयं अधायोऽयं अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यसर्वगतस्थानुरचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं ज्ञातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुम् अर्हसि जातस्य हि ध्रुवोर्मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि अव्यक्तादिनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यशृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यम् अवाध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्माद्धियुध्याच्छ्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमिदृशम् अत चेत् त्वम् इमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततस्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम् अवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते भयात्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिता निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् अथवा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महिं तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम् अवाप्स्यसि विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। ओम श्रीमद् भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे सांख्य योगो नामः द्वितीयोऽध्यायः। हरे कृष्णा, सभी का स्वागत है हमारे भगवद गीता के गीतामृत कक्षा में। गीतामृत का पान करते हुए जो ये घड़ा है, गीतामृत अमृत का ये घड़ा, अब हम केवल जो ऊपर की सतह है उसका ही पान थोड़ा बहुत किए हैं और गीतामृत, इसे अमृत इसलिए कहा गया है कि हालांकि रणभूमि पर गीता सुनाने के पश्चात केवल मृत्यु ही मृत्यु हुई, तो कोई ये पूछ सकता है कि इसे अमृत कैसे आप बोल सकते हो कि जिसे सुनने के पश्चात खून खराबा, मृत्यु, केवल कुछ योद्धाओं को छोड़कर, पांडवों को और कुछ एक योद्धाओं को छोड़कर 64 करोड़ वहां पर उपस्थित योद्धा सारे मारे गए, मृत, सारों की मृत्यु हुई। तो अब ये कैसे कोई बोल सकता है कि ये ग्रंथ सुनने के पश्चात हम अमृत या मृत्यु के परे जा रहे हैं? जैसे कि एक अंग्रेजी में कहावत है, एवरीवन वांट्स टू गो टू हेवन बट नो वन वांट्स टू डाई, कि भाई स्वर्ग सभी जाना चाहते हैं परंतु स्वर्ग कोई जाएगा कब? जब मरेगा तब ना, तभी तो बोला जाता है स्वर्गवासी मरने के पश्चात। तो भगवत धाम जो कि सच्चिदानंद धाम है भगवान का, जहां पर कोई मृत्यु नहीं, जो कि अमृत धाम है, कभी क्षीण नहीं होने वाला धाम, वहां जाने के लिए ये सारे जो हमारे अनर्थ हैं इनकी मृत्यु होना आवश्यक है। ये भौतिक शरीर, ये सूक्ष्म शरीर जो कि 3 गुणों के अधीन, जब तक इसका नाश नहीं होता। हालांकि यहां पर इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अब भगवद गीता के इस दूसरे अध्याय में ये नाशवान शरीर और ये जो शाश्वत आत्मा है इसका ज्ञान विशेष रूप से दिए हैं, इसलिए इस अध्याय का शीर्षक सांख्य योग भी कहा गया है। और श्रील प्रभुपाद ने इस अध्याय को नाम दिया गीता सार, उसकी भी हम चर्चा करेंगे क्यों गीता सार नाम दिया। तो फिर से हम भूल न जाएं इसलिए पहले अध्याय से हमने क्या सीखा वो ध्यान में रखना होगा, तब जाकर वो दूसरा अध्याय। कई बार आप देखो वो टीवी सीरियल में रिकैप होता है ना, पिछले हफ्ते आपने ये देखा उस हिसाब से, तो पिछले हफ्ते हमने हमारे इस एपिसोड में क्या सुना और क्या देखा, याद है भगवद गीता का पहला अध्याय, क्या शिक्षाएं हमने पहले अध्याय से सीखी? हाँ सब याद है, दिखाने की आवश्यकता नहीं, मैं भूल गया शायद इसलिए दिखाता हूं। तो सबसे पहली शिक्षा, मन हमें कभी भी धोखा दे सकता है, अर्जुन की स्थिति से हमने सीखा। दोनों सेनाओं के मध्य में अर्जुन जब देखते हैं तो अर्जुन का मन बदल जाता है कि नहीं, बिल्कुल विपरीत, जिसके लिए अर्जुन आए हैं उसका बिल्कुल विपरीत, नहीं युद्ध नहीं करना। ये हमारा मन इस प्रकार से हमें विपरीत चीजें कराने में लगा देता है। हमारा जो कर्तव्य है, कर्तव्य के ठीक विपरीत ये मन हमें करने के लिए कहता है और बाध्य बनाता है, वशीभूत एक बद्ध जीव हो जाता है। तो ये हमने अर्जुन के उदाहरण से सीखा। भगवान से संबंध किसी भी स्थिति में स्थापित किया जा सकता है, इसलिए प्रथम अध्याय का शीर्षक अर्जुन विषाद योग, कि अर्जुन ने अपने विषाद में भी, अपने परेशानी कठिनाई भ्रमित अवस्था में भी अर्जुन ने शरण ली भगवान की, इसलिए योग, अर्जुन का योग हुआ, संजोग हुआ भगवान से विषाद में भी। फिर अर्जुन पहले अध्याय में जो अपनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं, वो अर्जुन की चिंता धर्म शास्त्रों पर आधारित है। वो अर्जुन की चिंता केवल कोई मनगढ़ंत चिंताएं नहीं है या कपोल कल्पित चिंताएं नहीं है अर्जुन की, धर्म शास्त्रों पर आधारित अर्जुन की चिंताएं। इसलिए अर्जुन जैसे दूरदर्शी हमें हमारी साधना में बनना चाहिए। अर्जुन कहां तक आगे सोच रहे थे भविष्य में, जो अब तक पैदा भी नहीं हुए उनके विषय में अर्जुन सोच रहे थे कि उनका भविष्य क्या होगा इस युद्ध के पश्चात। जैसे कि ये जो हिरोशिमा नागासाकी में बम फेंके गए, एटॉमिक बम फेंके गए, आज तक उसके परिणाम वहां के लोग, वहां के जो अभी जो पैदा हो रहे हैं उनके शरीर में भी उसके परिणाम, वो सारे जो केमिकल और का रेडिएशन इफेक्ट उनके अंदर पाया जा रहा है। तो अब ये सारे वैज्ञानिक सोच रहे हैं कि उस समय हमने सोचा नहीं, ये जो दूरदर्शी अर्जुन सोच रहे हैं, इस प्रकार की सोच नहीं थी कि आगे चल के इसके दुष्परिणाम कहां कहां तक होंगे। इसलिए अर्जुन की तरह हमें दूरदर्शी बनना चाहिए, यह पहला अध्याय हमें सिखाता है। और अंततः जब तक हम अर्जुन की तरह दयालु, निरासक्त एवं कोमल हृदय के नहीं बनेंगे, तब तक भगवद गीता समझने के हम योग्य ही नहीं हैं। अर्थात पहले अध्याय से अर्जुन हमें दूसरे अध्याय, जो कि श्री भगवान वाच अब शुरू होने वाले हैं, भगवान की वाणी शुरू होने वाली है, तो अर्जुन हमें योग्य बना रहे हैं कि किस प्रकार की वृत्ति एक साधक के मन में या साधक के जीवन में होनी चाहिए। निरासक्त, एक दयालु स्वभाव वाला, और जो दूरदर्शी है और जो कोमल हृदय का है, उस प्रकार का जब तक कोई साधक अपनी वृत्ति को नहीं अपनाता, तब तक भगवान की वाणी उसके कानों में तो जाएगी परंतु हृदय तक नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए पहला अध्याय हमें योग्यता सिखा रहा है। अब दूसरा अध्याय, श्रील प्रभुपाद ने दूसरे अध्याय का शीर्षक दिया है गीता का सार। कौन बोल सकता है कि यह शीर्षक श्रील प्रभुपाद ने क्यों दिया? गीता के दूसरे अध्याय का शीर्षक ऐसा क्यों है? गीता में तो 18 अध्याय हैं, तो गीता का सार यदि पूछा जाए तो अंतिम अध्याय में सर्वधर्मान परित्यज्य ये सब कुछ होना चाहिए ना। किसी भी ग्रंथ का सार उसके अंत में बताया जाता है। तो ये तो केवल शुरुआत है, अभी तक तो भगवान का गीत शुरू नहीं हुआ। तो गीता, भगवान या भगवद गीता तकनीकी रूप से शुरू नहीं हुई, तो क्यों श्रील प्रभुपाद ने ऐसा शीर्षक दिया? इस अध्याय में सांख्य योग, कर्म योग, हाँ तो, लेकिन फिर भी क्या गीता का सार वो है? हाँ, देह और आत्मा का विभाजन बताया गया है, इसलिए
है, उसमें भगवान बोलते हैं कि यू हैव टू सरेंडर
हाँ, ये एक अच्छा मुद्दा है कि गीता में अर्जुन दो दफा शरणागत हुए, एक पूरी गीता सुनने के पश्चात शरणागति उनकी, सर्वधर्मान परित्यज्य करिष्ये वचनम तव, और इस हमने वो श्लोक भी पाठ किया, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेत शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। तो ये भी एक गीता का सार है, शरणागति, भगवान श्री कृष्ण के प्रति शरणागति। और कोई कारण? अर्थात देह और आत्मा में जो भेद वो उन्होंने समझाया। देखिए, आपके सबके मुद्दे वाजबी हैं, परंतु यहां पर यह समझना होगा कि भगवान ने गीता बोलना प्रारंभ किया ये सोचते हुए नहीं कि मैं 18 अध्याय सुनाने वाला हूं। हम यदि उस स्थिति पर जाएं, कुरुक्षेत्र की रणभूमि, अर्जुन ने जो प्रश्न पूछे, तो उस समय ऐसा नहीं कि भगवान सब सोच के आए थे कि अभी अभी दूसरा अध्याय मैं शुरू कर रहा हूं, इसके 72 श्लोक मुझे बोलने, और फिर तीसरा अध्याय शुरू होगा, और फिर चौथा, और फिर ऐसे 18 अध्याय, और उसके बाद पूरी गीता वो गीता प्रेस में देंगे गोरखपुर प्रिंटिंग के लिए। नहीं, यहां पर स्वाभाविक इनका ये संवाद चल रहा है। तो भगवान ने कुछ सोचा नहीं था कि भगवान आगे चलकर 9वां अध्याय भी सुनाएंगे, और फिर अष्टांग योग के बारे में 6ठे अध्याय में सुनाएंगे, भक्ति योग के बारे में सुनाएंगे, 3 गुणों के बारे में, फिर दैवी आसुर संपदा के बारे में 16वें अध्याय में, ये सब कुछ भगवान ने कुछ ऐसे सोचा नहीं था। इसलिए भगवान जो उत्तर दे रहे हैं ये दूसरे अध्याय में, भगवान यही सोचते हुए कि हां बस ये मेरे कुछ उत्तर सुनकर अर्जुन खड़ा होकर युद्ध करेगा, इसलिए जो कुछ देना था भगवान ने वो एक ही साथ इस अध्याय में अर्जुन को देने का प्रयास किया। जैसे हम अब जो गीता की चर्चा कर रहे हैं, तो हम केवल आज का एक श्लोक दूसरे अध्याय का बस वही ले रहे हैं। यहां पर यदि ये अनाउंसमेंट किया जाए कि पूरी गीता, एक वेडनेसडे क्लास पूरी गीता, नहीं पता नहीं कितने लोग आएंगे उसमें, वो पाठ करते करते पूरा बुधवार चला जाएगा, 700 श्लोक। तो भगवान ये सोचते हुए कि बस अर्जुन के ये कुछ जो प्रश्न हैं, ये जो कुछ शंकाएं अर्जुन की हैं, ये जो कुछ संशय अर्जुन के हैं, मैं बस कुछ श्लोकों में उत्तर दे दूंगा। इसलिए आप गीता को क्रोनोलॉजिकली नहीं समझ सकते, भागवत भी ऐसा ही है कि वो कोई श्रृंखला में नहीं जैसे सुनाया गया। जैसे कई बार आप देखो नुक्कड़ पर बैठकर कोई ऐसे ही बातें करते हैं ना, तो उसकी कोई श्रृंखला नहीं होती। ऐसा नहीं कि हाँ अभी ये मुद्दा तुम ऐसे बोलना, प्रज्वल्ल जो चलता है, ये मुद्दा तुम ऐसे बोलो, उसके बाद मैं ऐसे, उसके बाद तुम्हें, उसके बाद ऐसे, नहीं उसमें अरे वो पता है क्या, वो एक्सीडेंट हो गया, हाँ हुआ ना वो, सुना मैंने, वो पूरा पाइपलाइन गिर गया, हाँ मेरे भी घर का वो प्लम्बर आया नहीं अभी तक, पाइपलाइन लीक है, कहां से कहां गया, देखो कॉन्वर्सेशन। हाँ वो प्लम्बर ऐसे ही होते हैं आजकल, कितना पैसा लेते हैं, वो हमारा इंक्रीमेंट नहीं हुआ, वो बॉस मेरे पति का बॉस भी ऐसे ही कर रहा है, वो इंक्रीमेंट भी नहीं दे रहा, दिवाली का मौसम चल रहा है और इंक्रीमेंट नहीं मिला, कहां से, देखो पाइपलाइन से दिवाली तक पहुंच गया कौन से। तो ये इसको कहते हैं स्पॉन्टेनियस प्रज्वल्प, परंतु यहां पर भगवान के मुख से जो भी वाणी निकलती है वो भी स्पॉन्टेनियस है, परंतु वो प्रजल्प नहीं है। वो हम सब को प्रजल्प से बाहर निकालने के लिए है। इसलिए ये जो दूसरा अध्याय है इसमें भगवान अर्जुन को सब कुछ देना चाहते थे, कर्म योग, ज्ञान योग, सांख्य योग, भक्ति योग, इन सब की रूपरेखा भगवान ने इस दूसरे अध्याय में दे दी। इसलिए अध्याय इतना बड़ा है, 72 श्लोक इसके। तो इसके जो 72 श्लोक हैं, अब इसका विभाजन हम पहले देख लेंगे कि एक ओवरव्यू पूरे 72 श्लोक भगवान ने किस प्रकार से सुनाए, कि पहले से लेके कितने श्लोकों तक भगवान क्या सुना रहे हैं, फिर बीच बीच में अलग अलग उसका हम विभाजन कर प्रस्तुत किए हैं। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जैसे हम अब चर्चा शुरू करेंगे दूसरे अध्याय की, तो ये विभाजन जो हमने किया है इसके अनुसार चर्चाएं होंगी। तो सबसे पहले आज का जो श्लोक हम लेंगे और 10वें श्लोक तक, अब तक अर्जुन के और संशय अर्जुन पूछ रहे हैं, तो अर्जुन के कुछ और संशय यहां पर संजय प्रस्तुत कर रहे हैं। तो पहले जो 10 श्लोक हैं वो अर्जुन के संशय, उसके पश्चात 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक भगवान द्वारा शरीर एवं आत्मा, वो शायद पीछे चला गया, आत्मा दिखता नहीं ना वैसे भी तो शरीर एवं आत्मा के भेद का निरूपण, और फिर 31वें श्लोक से 38वें श्लोक तक कर्मकांड का विचार, कि भगवान अर्जुन को कर्मकांड प्रस्तुत कर रहे हैं कि युद्ध करने से तुम्हें कैसे स्वर्गवास मिलेगा। ये सब कर्मकांड विचार है, स्वर्ग का वास मिलना, ये सब कर्मकांड विचार है। तो कर्तव्य करने से, युद्ध करने से स्वर्ग का वास कैसे मिलेगा, इसलिए युद्ध करो। तो भगवान हर तरीके से अर्जुन की परीक्षा ले रहे हैं। उसके पश्चात फिर निष्काम कर्म की व्याख्या भगवान कर रहे हैं, कि उसके ऊपर निष्काम कर्म क्या है, अर्थात भक्ति योग भी वही है एक प्रकार से, निष्काम कर्म। तो भक्ति योग की कुछ रूपरेखा भगवान दे रहे हैं उन श्लोकों में। और फिर जो अंतिम भगवान कर्म समाधि क्या है ये बता रहे हैं, कि इस संसार में रहते हुए कर्म करते हुए कैसे कोई समाधस्थ अवस्था को प्राप्त कर सकता है। कर्म करते हुए समाधि, अक्सर हम क्या सोचते हैं, जैसे ही हम समाधि ये शब्द सुनते हैं तो मन में क्या विचार आता है, कोई ऐसे बैठा है आंख बंद कर और कुछ नहीं कर रहा, समाधस्थ है, ये विचार आता है। यहां पर भगवान ये दूसरे अध्याय के अंतिम श्लोकों में बता रहे हैं कि कर्म करते हुए कैसे समाधि को प्राप्त करें। अर्थात जो अंतिम अध्याय में अर्जुन समाधि को प्राप्त किए, करिष्ये वचनम तव, युद्ध कर, उसके बारे में भगवान यहां पर सिखा। इसलिए ये गीता का सार है। तो इस प्रकार से ये 72 श्लोकों का विभाजन किया गया है, और फिर हम लेंगे सबसे पहला श्लोक आज का, गीता के दूसरे अध्याय का। अब तक संजय बोल रहे हैं, क्यों संजय बोल रहे हैं, क्योंकि जो अंतिम श्लोक था पिछले अध्याय का वो किसने सुनाया था, संजय ने सुनाया था। तो यहां पर हम ये भी देखेंगे कि विभाजन कैसे किया गया है, अध्यायों का विभाजन कैसे किया गया है। हालांकि संजय की ही वाणी चल रही है, संजय बोल रहे हैं, परंतु फिर भी वो दोनों श्लोक के बीच में विभाजन कर उसे पहला अध्याय बताया गया और इसे दूसरा अध्याय। संजय उवाच तम तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विशिदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। तो संजय कहते हैं, अर्जुन की परिस्थिति बता रहे हैं। अब तक पिछले श्लोक में भी और इस श्लोक में भी संजय अर्जुन की परिस्थिति बता रहे हैं कि अर्जुन अपने वाक्यों को कहकर, अपने तर्क वितर्क प्रस्तुत कर, अपने संशयों को प्रस्तुत कर अर्जुन का क्या हाल। तो यहां पर अब एक संजय ऐसी स्थिति देख रहे हैं, मानो यदि हम संजय के साथ स्थिति देख रहे होते, तो संजय अब ऐसी स्थिति देख रहे हैं कि अर्जुन ने अपना विषाद प्रस्तुत कर अर्जुन अब बैठ गए। उपाविशत, पिछले अध्याय का अंतिम श्लोक, बैठ गए रथ पर, बैठ गए अर्जुन। शोक संविग्न मानस, शोक से संविग्न अर्जुन, शोक युक्त अर्जुन अब बैठ गए। और यहां पर एक ऐसा समय संजय दिखा रहे हैं हम सबको कि जिस समय कोई कुछ नहीं बोल रहा, पूरे रणभूमि में शांति है। अब तक अर्जुन बोल रहे थे, बाकी सब लोग सुन रहे थे, भगवान भी सुन रहे थे, अर्जुन बोल रहे थे। अब ये दो श्लोकों में स्थिति ऐसी है, संजय बता रहे हैं कि शांति, क्योंकि अर्जुन थक हार कर बैठ गए और भगवान अब तक बोलना शुरू नहीं किए। तो भगवान बोलना शुरू करें और अर्जुन बोलने के पश्चात, ये जो बीच का समय है, यहां पर संजय बोल रहे हैं कि वातावरण एकदम शांत है, पिन ड्रॉप साइलेंस जिसे बोलते हैं, कि कोई अब कुछ नहीं बोल रहा। अर्थात मानो ये ऐसी परिस्थिति है कि ये प्रश्न पूछ सकते हैं, यहां पर संजय क्या बोल रहे हैं, उवाच मधुसूदन। तो ये कैसे हो सकता है कि संजय को पता कि भगवान अभी बोलेंगे गीता, समझ में आ रहा है आपको, कि भगवान अब बोलने वाले हैं। अब जैसे मुझे क्या पता ये बोलने वाला था ये लड़का, यदि मैं बोल दूं कि 2 मिनट बाद बच्चा बाहर से चिल्लाने वाला है, तो आपको लगेगा अंतर्यामी है क्या ये, ऐसे कैसे बोल सकते। जैसे मैं कैसे बता सकता हूं कि आपके मन में क्या चल रहा है, नहीं बता सकता। कई बार बता सकते हैं, परंतु अक्सर उन नहीं बता सकते कि किसी के मन में क्या। यहां पर देखिए संजय की दिव्य दृष्टि देखिए, यहां पर हमें उनके गुणों का बखान पहले करना है कि उनकी दृष्टि देखिए कि वो भगवान के मन में जाकर देख रहे हैं कि भगवान बोलेंगे। अर्थात भक्त की प्रगति यहां पर देखी जाती है, जैसे संजय कि इनकी प्रगति कैसे देखी जा रही है कि इन्होंने भगवान के मन को पहचान लिया। भगवान के मन को पहचानना, भगवान के स्वरूप को जानना वो बहुत आसान है, परंतु भगवान के मनोधारणा, किसी भी व्यक्ति के शरीर को देखकर जांच परख कर लेना ये ठीक है। किसी डॉक्टर के पास जाओ, उनके पास सब कुछ उपकरण होते हैं, ब्लड प्रेशर कितना है, हार्ट बीट क्या है, आपका खून कहां कहां से जा रहा है, कहां बंद हो गया, सब कुछ, एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन, क्या कुछ नहीं है। परंतु कोई ऐसा उपकरण है जो उसके मन में क्या चल रहा है, वो अभी क्या सोच रहा है, उसके मन में ये सब कुछ नहीं। तो इसलिए यहां पर संजय, इनकी दिव्य दृष्टि ऐसी दिव्य दृष्टि है कि न केवल वो जो साधारण नहीं देख पा रहे उनको देख पा रहे हैं, बल्कि भगवान के मन को देख पा रहे हैं कि अभी भगवान बोलने वाले हैं। और इसी की तो प्रतीक्षा में संजय थे, इसीलिए तो वो आज तक जीवित थे कि गीता भगवान के मुख से उनको सुनने मिलेगी। इसलिए यहां पर यह हम कह सकते हैं कि यह अध्यायों का विभाजन संजय ने किया कि अब वो जान रहे हैं कि वास्तविक गीत भगवान का अब शुरू होने वाला है। इसलिए व्यासदेव जी वो जब लिख रहे हैं या गणपति जी व्यासदेव जी जो सुना रहे हैं गणेश जी को, तो गीता जब लिखी जा रही है तो ये पहले अध्याय और दूसरे अध्याय का विभाजन संजय जो है उनके मनोधारणा से विभाजित हुआ है। ये अध्याय अलग अलग अध्याय विभाजित हुए हैं, आप लोगों को समझ में आ रहा है? तो इसलिए अब तक संजय पिछले अध्याय का अंतिम श्लोक और इस अध्याय का ये पहला श्लोक, अब तक वो बता रहे हैं अर्जुन की स्थिति, क्योंकि अर्जुन अब बैठ गए हैं तो अर्जुन की स्थिति बता रहे हैं। क्या स्थिति बता रहे हैं? सबसे पहले वो कहते हैं रथोपस्थ उपाविशत, फिर कहते हैं विसृज्य चापम शोक संविघ्न कृपा आविष्टम अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम। तो एक छोटा सा यूनिट टेस्ट, ये कौन से श्लोकों से हम लिए हैं ये शब्द? आज के श्लोकों में क्या विवरण है अर्जुन का? आज के श्लोक से हाँ? वो तो पता है क्योंकि अंतिम वही है। अंतिम दो कृपया आविष्टम और अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम, और पहले तीन 45 नहीं 46। तो जो अंतिम श्लोक पिछले अध्याय का, वहां से ये अर्जुन की स्थिति को बताते हुए संजय कह रहे हैं। इसलिए ये एक साथ हमने लिया क्योंकि ये दोनों श्लोक एक साथ लेकर समझ में आएगा कि क्या विवरण अर्जुन की स्थिति का संजय दे रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, आप कल्पना कीजिए कि संजय अब हमें सुना रहे हैं और सुनाते हुए कहते हैं कि रथो उपस्थ उपाविशत, अर्थात रथ पर अब बैठ गए, खड़े थे, अब तक अर्जुन खड़े थे, अर्जुन बैठ गए। तो ये एक शारीरिक लक्षण, अर्जुन का एक शारीरिक लक्षण संजय हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, बैठना, बैठे अर्जुन। फिर विसृज्य चापम, केवल बैठे नहीं, विसृज्य चापम का अर्थ है गांडीव को उन्होंने साइड में रख दिया, छोड़ दिया, गांडीव को छोड़ दिया, अपने धनुष को त्याग दिया। देखिए ये सारे जो शारीरिक लक्षण हैं, ये संकेत कर रहे हैं कि अर्जुन के मन में क्या चल रहा है, बैठ जाना, छोड़ देना, गांडीव को छोड़ देना। ये इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा एक शारीरिक प्रदर्शन था अर्जुन का, गांडीव को छोड़ना। कोई बोल सकता है क्यों? क्यों संजय ये बोल रहे हैं धृतराष्ट्र को कि गांडीव को साइड में रखा? कोई इतनी महत्वपूर्ण बात तो साधारण रूप से नहीं दिखती, कोई बैठना, ये सब कई बार हम जब किसी का विवरण करते हैं तो इतने डिटेल में जाके नहीं बताते वो कैसे बैठा, कहां बैठा, फिर उसने कौन सा पैर कहां ऊपर रखा। यहां पर देखिए डिटेल्स में बता रहे हैं और ये डिटेल सबसे जरूरी है। विसृज्य चापम मतलब हाँ निराश, हाँ होने का साइन, गांडीव को त्यागना। हाँ अर्जुन का मुख्य शस्त्र गांडीव था, और एक विशेष यहां अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली थी, ये संजय धृतराष्ट्र को और हम सबको याद दिला रहे हैं। अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली थी कि जो भी कोई मुझे मेरा गांडीव त्यागने के लिए बोलेगा उसके प्राण में हर लूंगा। इतना बड़ा इंसल्ट अर्जुन ने ये प्रतिज्ञा ली थी। तो मानो संजय और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की तरफ देख रहे हैं, कहां गई तुम्हारी प्रतिज्ञा, तुम खुद को मारोगे क्या, खुद ने त्यागी ना। महाभारत में आगे ये कथा है कि कर्ण के साथ युद्ध करते समय युधिष्ठिर महाराज घायल हुए और उस समय अर्जुन नहीं थे। तो युधिष्ठिर महाराज घायल हुए और कर्ण ने युधिष्ठिर महाराज से कहा कि आप जाइए, फिर से आपको मैं रिहा करता हूं, आपको मारूंगा नहीं, आप मेरे लायक ही नहीं हो, तो कुछ मिलेगा भी नहीं आपको मार के। तो ऐसे अपमानित करकर युधिष्ठिर महाराज को कर्ण ने भेज दिया और यह समाचार अर्जुन जो युद्ध के किसी और कोने में, युद्ध रणभूमि के किसी और कोने में युद्ध कर रहे थे, अर्जुन को जब यह समाचार मिला तो अर्जुन वो सबसे पहले दौड़ कर गए युधिष्ठिर, क्योंकि कर्ण के साथ युधिष्ठिर और अर्जुन प्रतीक्षा में थे कि कर्ण के साथ कब युद्ध होगा। तो कर्ण के, तो अर्जुन डर गए कि क्या कर्ण ने युधिष्ठिर महाराज को मार तो नहीं दिया। तो सबसे पहले कर्ण से युद्ध करने से पहले अर्जुन गए युधिष्ठिर महाराज का हाल पूछने के लिए। और युधिष्ठिर महाराज ने जैसे अर्जुन को देखा आते तो युधिष्ठिर महाराज बहुत प्रसन्न हुए कि अर्जुन ने शायद मेरे अपमान का बदला ले लिया होगा। तो युधिष्ठिर महाराज गुणगान करने लगे कि मैं जानता था कि अर्जुन तुम ही कर्ण को परास्त कर पाओगे। तो अर्जुन ने कहा नहीं नहीं मैं अभी तक गया ही नहीं, मैं केवल आपका हाल देखने के लिए आया। तो युधिष्ठिर महाराज इतने क्रोधित हुए कि तुम युद्ध भूमि छोड़कर बिना कर्ण को मारे यहां मुझे देखने आए, अरे धिक्कार है तुम्हारे ऊपर, धिक्कार है तुम्हारे गांडीव के ऊपर, छोड़ दो उस गांडीव को, क्या फायदा तुम्हारे गांडीव का। अर्जुन को प्रतिज्ञा याद आ गई, मैंने ये प्रतिज्ञा ली, जो भी मुझे कहेगा मेरे गांडीव को त्यागने के लिए उसके प्राण गए। अर्जुन ने अपना गांडीव उठाया युधिष्ठिर महाराज को मारने के लिए। देखिए उस समय के क्षत्रिय उनको जो प्रण भी लेते थे तो चाहे वो भाई हो, सगा संबंधी हो, चाहे शत्रु हो, वो छोड़ेंगे नहीं अपना प्रण। तो गांडीव उठा लिया और अब मार अपने ही भाई को। उस समय भगवान श्री कृष्ण वो आए वहां पर, टाइम पे आते हैं वो, इसलिए हमें भी हमारे जीवन में हर समय इतने उतावले नहीं होना चाहिए, कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे, आएंगे उनको पता है। जब ऐसी परिस्थितियां आती है ना, सब बराबर टाइम पे भगवान आते हैं मदद करने के लिए। तो भगवान पहुंचे और अर्जुन, अर्जुन क्या कर रहे हो? तो अर्जुन ने भगवान से कहा मैंने जो प्रण लिया है उससे तो मैं पीछे नहीं हट सकता, और इन्होंने जो बात बोल दी वो ठीक नहीं। तो भगवान ने कहा कि शास्त्रों के अनुसार तुम किसी को अपमानित करो तो वो एक क्षत्रिय के लिए मरने से भी ज्यादा बदतर है अपमान। तो तुम अपने कटु वाणी से अपमानित कर दो युधिष्ठिर महाराज को और वो मरने योग्य है युधिष्ठिर महाराज के, तुम्हें शारीरिक रूप से मारना नहीं पड़ेगा। तो अर्जुन ने फिर गाली गलौज शुरू किया। अब देखिए ये सब महाभारत में दिया गया है कि अर्जुन युधिष्ठिर महाराज को गाली दे रहे हैं, अरे किस प्रकार के तुम पुरुष हो कि तुम्हारी पत्नी वहां पर दुशासन वो निर्वस्त्र कर रहा था और तुम खड़े देख रहे थे, अरे मैं अकेला पूरी कुरु सेना को हरा देता, मुझे मना किया, अरे किस प्रकार के तुम पति हो। इस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज को, उनके मन में इतना बुरा लग रहा था ये सब, लेकिन बोलना पड़ रहा था। कई बार हमारा उल्टा होता है, हम अच्छा बोलते हैं लेकिन मन में। तो यहां पर वो बोल रहे हैं और सब कुछ बोलने के पश्चात अब उन्होंने ये प्रण लिया, मैंने युधिष्ठिर महाराज जैसे धर्मात्मा को, मेरे अग्रज को ऐसी वाणी बोली है, मुझे जीवन जीने का कोई अधिकार नहीं, वो आत्महत्या करने के लिए तैयार। तो अभी ये देखिए भगवान को कहां कहां किसी को संभालना है, यहां पे पहले इनको बचाओ, युधिष्ठिर महाराज को, ये अभी इनको बचाओ, ये जा रहे हैं आत्महत्या करने। तो फिर भगवान ने कहा अर्जुन से कि शास्त्र के अनुसार यदि कोई स्वयं का तिरस्कार करता है तो वो आत्महत्या के समान है, तो तुम अब स्वयं का तिरस्कार करो। पहले युधिष्ठिर महाराज का, फिर स्वयं का तिरस्कार। तो भगवान वो जो आजकल की भाषा में कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन जो कराते हैं ना, उनको कहते हैं मीडिएटर, या अंग्रेजी में ओम्बुड्समैन बोलते हैं उसको। तो मीडिएटर जो होते हैं वो बीच में, तो उस प्रकार से भगवान देखिए कितने अलग अलग प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट मीडिएट कराएं, कराए भी और कॉन्फ्लिक्ट कराया भी। यहां पे ये दूसरा अध्याय जो शुरू होगा। तो युधिष्ठिर महाराज को मारने के लिए उतारू, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज ने केवल एक ऐसा वाक्य बोल दिया कि क्या फायदा तुम्हारे गांडीव धारण करने का, फेंको उसे कचरे में, क्या फायदा। और यहां पर ये क्या कर रहे हैं खुद। तो इसलिए ये ध्यान देना होगा कि संजय क्यों ये बोल रहे हैं, विसृज्य सशरम चापम, कि अपना गांडीव त्याग दिया। क्योंकि सभी जानते थे अर्जुन की प्रतिज्ञा, तो सभी ने जब देखा अर्जुन ने अपना गांडीव छोड़ दिया, तो ये बहुत बड़ी बात थी सभी को देखने के लिए। और फिर शोक संविग्न, पूर्ण रूप से शोक में संविग्न अर्जुन दिख रहे थे। अब देखिए जो पहली जो दो स्थिति बताई वो शारीरिक स्थिति बताई, शोक संविग्न, अब ये आंतरिक स्थिति बता रहे हैं, अर्जुन की मानसिक स्थिति बता रहे हैं। तो व्यक्ति के बॉडी लैंग्वेज से समझ में आता है कि उसके मन में क्या चल रहा है, और उसके मन में क्या है ये उसके बॉडी लैंग्वेज से भी समझ में आता है। तो यहां पर मानो संजय ये बोल रहे हैं कि अरे मैं खुद देख रहा हूं कि अर्जुन के सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर में क्या अंतर दिख रहा है, क्योंकि दूसरा अध्याय वही है, आत्मा और देह में अंतर। तो यहां पर संजय धृतराष्ट्र को यह संकेत दे रहे हैं कि ये दूसरा अध्याय यही अंतर हमें सिखाने वाला है, आत्मा और देह में, शरीर में अंतर। कृपा आविष्टम अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम, और फिर रोने लगे अर्जुन, आंखों से अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। अर्थात आप देखिए जब भी कोई व्यक्ति किसी शोक अवस्था में रहता है तो उसकी शोक अवस्था की जो पराकाष्ठा है वो कब दिखती है, जब रोना शुरू कर। छोटे बच्चों को भी आपने देखा होगा, कुछ छीन लो उनके हाथ से तो पहले ऐसा थोड़ा गुस्से में, फिर देखेंगे फिर शोक संविग्न, जब रोना शुरू करते हैं तब समझ में आता है कि वापस देना है अभी। जैसे रोना शुरू हो गया तब फिर कुछ ना कुछ करके उसको चुप करना होगा। इसलिए ये जो रोने की क्रिया है, ये रोने की क्रिया बहुत शक्तिशाली है, इसके हम चर्चा करेंगे। अर्जुन कोई बिना कारण नहीं रो रहे, जानते हैं क्यों रो रहे हैं। अश्रु पूर्ण कुल इक्षणम, आंखों में इक्षणम, आंखों में अश्रु पूर्ण, ऐसे नहीं एक दो बूंद यहां वहां छींटे आ रही थी आंसुओं की, पूर्ण भरा हुआ उनका चेहरा, उनकी आंखें आंसुओं से, अश्रुओं से। तो यहां पर ये जो दो श्लोक, इन दो श्लोकों में अर्जुन की स्थिति संजय मानो इस प्रकार से बता रहे हैं कि इतना कोमल हृदय कि किसी ने कुछ कहा नहीं अब तक अर्जुन को, किसी ने कुछ नहीं कहा, केवल देखने मात्र से ये सब कुछ हो रहा है, ये सॉरी जो लक्षण देख रहे हैं, देखने मात्र से, दुर्योधन, भीष्म, द्रोण, इनको देखने मात्र से ये सब कुछ हो रहा है। तो अब इसका गुणगान हुआ है ना, इसका गुणगान हुआ है कि कितने कोमल हृदय के अर्जुन, कितने कृपा कृपा आविष्ट आविष्ट हुए हैं कृपा से अर्जुन, किसके प्रति? अपने शत्रुओं के प्रति। तो कोई साधारण व्यक्ति अर्जुन की स्थिति को देखकर तो अर्जुन का गुणगान ही करेगा कि क्या उदार हृदय वाले अर्जुन हैं, परंतु नहीं। एक प्रश्न ये सामने एक सिद्धांत को प्रस्तुत किया जा रहा है, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं इसलिए हमने ये सिद्धांत लिया है, मानव सेवा और माधव सेवा। तो अब तक अर्जुन पहला अध्याय पूरा हो चुका है, अब ये दूसरा अध्याय प्रारंभ हुआ है। अब तक अर्जुन कौन सी श्रेणी में है? मानव सेवा। और पूरी गीता सुनने के पश्चात माधव सेवा। तो ये प्रश्न अब सामने है कि मानव सेवा और माधव सेवा में कौन सी सेवा ज्यादा महत्वपूर्ण है? हाँ, माधव सेवा। अच्छा, हाथ ऊपर कीजिए कौन कौन ये कहते हैं कि मानव सेना मानव सेवा ज्यादा महत्वपूर्ण है। अच्छा, और कौन कौन इस मत के हैं कि माधव सेवा ज्यादा महत्वपूर्ण है? बीच के भी कोई है क्या? एक अंग्रेजी की एक कहावत आपके सामने यहां पे प्रस्तुत करेंगे, हैंड्स दैट सर्व आर होलियर देन लिप्स दैट प्रे। तो मैं आप लोगों को समझ में आया कि ओके ठीक है, तो मैं आपको अब पूछना चाहूंगा कि ये सुनने के पश्चात, देखने के पश्चात अब क्या मत है, कुछ मत आप प्रस्तुत करना चाहेंगे इसके संदर्भ में, मानव माधव सेवा और ये जो एक प्रोवर्ब हमने सामने रखा है। हाँ, जैसे श्रील प्रभुपाद ने किया वैसे क्या किया? अच्छा, कितने आप, ये भी तो मत हो सकता है ना कि दोनों महत्वपूर्ण है, ये सेफ है ना सबसे कि दोनों महत्वपूर्ण है, मानव एवं माधव। अब देखिए, गीता के अनुसार क्या मानव को माधव से अलग किया जा सकता है? कौन सा श्लोक है जिसमें इसकी पुष्टि हुई है? ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, भगवान कहे हैं इस श्लोक में कि ये केवल मानव नहीं, सारे जीव, पशु पक्षी कीट जानवर, सारे ये सारे जीव भगवान के अंश हैं। तो यदि ये भगवान के अंश हैं अर्थात माधव के अंश हैं ये सभी, तो ये कहना कि मैं केवल माधव की सेवा करूंगा, इन अंशों की सेवा नहीं, वो भी गलत है। ये ऐसा हुआ जैसे मानो कि कोई व्यक्ति है, उसके घर पे आप जा रहे हो, आपके जान पहचान का व्यक्ति है, और आप उससे बहुत प्रेम से बात करते हो, जो व्यक्ति है उससे, उसे फूल माला वगैरह पहनाते हो और उसके बच्चे को 2-3 थप्पड़ लगा के आए, तो कैसा लगेगा उसे? नहीं, आप इतने बड़े हैं, आप क्या गुणगान, और वो बीच में। लेकिन आप जो है ना, मैं तो आपको पूरा सर्वस्व अर्पित करना चाहता हूं, सर्वधर्मान परिचय। और दूसरी परिस्थिति लेते हैं, दूसरी परिस्थिति। अब वो बच्चे के पीछे वो गया है घर पे, और वो बच्चे को ही लेके, बेटा कैसे हो बेटा, ये लो लॉलीपॉप, बेटा ये लो चॉकलेट, हो बेटा 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 बेटा। और पिताजी, पिताजी गए भाड़ में बेटा, तो पिताजी को पूर्ण रूप से दुर्लक्ष किया और केवल बेटा। और यहां पर एक दूसरी परिस्थिति, जो पहली परिस्थिति हमने देखी, तो वो पिताजी वो प्रसन्न होंगे कब? जब उसके अंशों को भी उसी प्रकार से आदर सत्कार दिया जाएगा। और अंशों का आदर सत्कार होगा कब? जब वो अंश किसका है। इसलिए अब देखिए, हिंदी में जब भी कोई छोटा शिशु या किसी की पत्नी होती है, या जो भी किसी पर निर्भर होता है, तो हर समय पूछा जाता है किसके हो या किसकी हो। तो छोटी सी लड़की होती, जब उसको बाल्यावस्था में पूछा जाता है किसकी हो, तो बोलती है पिताजी की। बड़ी हुई, उसका विवाह हुआ, अब पूछा जाता है किसकी हो, तो कहती है पति की। जब बड़े हो गए, बच्चे बड़े हो गए, अब वृद्ध अवस्था, वानप्रस्थ की अवस्था आ गई, अब पूछा जाए बेटे की। उसी प्रकार से हर एक व्यक्ति, हर एक जीव, वो किसी न किसी का है। कोई नहीं कह सकता कि मैं आत्मनिर्भर हूं, मैं किसी का नहीं हूं। नहीं, हम सब वो जो माधव है उन पर निर्भर हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने अपने तात्पर्यों में ये दोनों बातों की पुष्टि की है। केवल इतना सोचना कि बस मानव सेवा ही सब कुछ है और माधव सेवा की आवश्यकता नहीं है, ये शास्त्र अनुसार नहीं है। और केवल ये सोचना कि बस केवल माधव सेवा करते रहो, बाकी मानव गए भाड़ में, नहीं। ये दोनों सिद्धांत का एक संतुलित मेल होना चाहिए, मानव और माधव से। और इसका संतुलित मेल यह है कि दोनों का क्या रिश्ता है, यह समझने के पश्चात जब सेवा की जाएगी, तब जाकर वो सेवा वो भगवान को संतुष्ट करेगी और मानवों को भी संतुष्ट करेगी। इसलिए जब श्रील प्रभुपाद कहते थे कि जो सत्संग कार्यक्रम है, सत्संग कार्यक्रम में आत्मा की संतुष्टि के लिए क्या कुछ नहीं दिया जा रहा है, जैसे श्रवण कीर्तन, और शरीर की संतुष्टि के लिए प्रसाद, वो आत्मा को भी शुद्ध करने वाला है वो प्रसाद, और शरीर के तत्वों को भी शुद्ध करने वाला है वो प्रसाद। अर्थात केवल हम एक सत्संग कार्यक्रम कोई लें, शास्त्र के अनुसार जो किया जाता है, उसमें आत्मा और जो देह है, इन दोनों, और आत्मा भगवान का अंश है, देह भी भगवान की ही शक्तियां हैं, परंतु उन दोनों में भगवान को केंद्र में रखते हुए उसकी सेवा की जाती है। जैसे कि यदि यह पूछा जाए कि आप आपके परिवार वालों की सेवा क्यों करते हो, कोई पिता अपने पुत्र कितनी सेवा क्यों करता है, या पुत्र अपने पिता की सेवा, भाई अपने भाई की सेवा, मां अपने बच्चों की सेवा, बच्चे अपने मां बाप की सेवा क्यों करते हैं? क्योंकि वो संबंध देख रहे हैं ना, अंग्रेजी में जिसे रिलेटिव बोलते हैं, संबंध देख रहे हैं कि हाँ ये मेरा भाई क्यों है, क्योंकि हम सहोदर हैं, एक ही उदर से पैदा हुए, इसलिए मैं सेवा कर रहा हूं। तो उस सेवा में भी यह देखा जाएगा कि वो सेवा संतुलित है, जानते हुए कि हमारे एक माता पिता हैं, इसलिए हम एक दूसरे की सेवा, इसलिए हम एक दूसरों में स्नेह हैं। इसीलिए शास्त्र के अनुसार ये जो हमारी चेतना है इसे बृहद बनाना है। केवल इतना ही नहीं सोचना है कि ये मेरे परिवार का है इसलिए मैं इसका स्नेही हूं, इसलिए मैं इससे स्नेह रखता हूं, परंतु भगवान के सब अंश हैं ये जब देखेंगे तो हरेक मानव, हरेक जीव, अरे ये मानव सेवा तो छोड़ दीजिए, भगवत गीता में तो भगवान कहे हैं कौन है पंडित जो एक कुत्ते में, जो कि एक चांडाल में, जो कि एक ब्राह्मण में एक समान भगवान के अंश को देखता है। पंडित सम दर्शिना, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनिचैव शोपाकेच पंडित समदर्शिना, उसे कहते हैं समदर्शी, और उसे कहते हैं उदार हृदय या चेतना वाला। इसलिए इन दोनों को हम अलग नहीं कर सकते, जैसे पिता पुत्र को उनके अनुसार उनका आदर देना है, यदि मानव को माधव का आदर दिया जाए वो गलत, और माधव को मानव बना दिया जाए वो भी गलत। पुलिस कमिश्नर को हवलदार बुलाओ तो दंडित होगा कोई, और हवलदार को पुलिस कमिश्नर बुलाओ वो भी गलत। पुलिस कमिश्नर को पुलिस कमिश्नर का आदर सत्कार मिलना चाहिए, हवलदार को हवलदार का आदर मिलना चाहिए, और दोनों को आदर एक साथ भी देना चाहिए, क्योंकि दोनों एक ही डिपार्टमेंट के, पुलिस डिपार्टमेंट के। अब पिंजरा आणि पोपट, इसकी एक कथा, इसकी कथा श्रील प्रभुपाद सुनाया करते थे कि एक राजा जिसे किसी ने बहुत ही सुंदर एक तोता भेंट दिया, और क्योंकि राजा को तोता भेंट दिया है तो एक सोने के पिंजड़े में उस तोते को डालकर भेंट के रूप में दिया राजा को। तो राजा ने, अब राजा व्यस्त अपने राज के कार्यभार में, तो राजा ने अपनी जो दादी थी दादी को दे दिया कि इसे संभालो। तो अब इनकी दादी वो क्या की, जैसे यहां पे क्या देख रहे हैं, उसने देखा अपनी चार आंखों से कि ये पोपट या तोता कितने का आता है, परंतु सोने के पिंजड़े में है, तो सोने के पिंजड़े को रोज वो पॉलिश करती थी और सोने के पिंजड़े को चमका चमका के, मेरा बेटा जब देखेगा कितना प्रसन्न होगा, देखो कितना अच्छा पिंजड़ा मैंने चमका के रखा। तो बेटा जो राजा आया एक महीने बाद आकर देखना चाहता था कि तोता कैसा है, आके क्या देखता है, मरा हुआ। तो पिंजड़े को इतना अच्छे से साफ किया, तोते को एक कुछ खाने के लिए नहीं निवाला। क्यों? क्योंकि उसने महत्व ज्यादा किसको दिया, पिंजड़े को। तो प्रभुपाद ये छोटी सी कथा सुनाया करते थे, उसी प्रकार से ये जो शरीर है वो पिंजड़े के समान है, और वो तोता आत्मा इस पिंजड़े के अंदर। और अधिकांश आजकल हम क्या देखते हैं कि इसकी लिपाई पुताई कितनी हो रही है, इसको पॉलिश नीचे से ऊपर तक कितना घिसाई पिसाई चलता रहता है, सुबह से रात तक साबुन से, लोशन से, क्रीम से, ये वो पिंजड़े की सफाई, और अंदर का तोता बेचारा इतना ज्यादा कमजोर हो गया कि वो बोल भी नहीं पा रहा कि कुछ खाने दो। तो ये अवस्था श्रील प्रभुपाद इसलिए ये उदाहरण देकर बताए कि हां, शरीर की सेवा वो बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु यदि शरीर की, जैसे पिंजड़े को भी साफ करना महत्वपूर्ण है, परंतु यदि उसको साफ करते करते तोते को खिलाना कोई भूल जाए तो क्या फायदा ऐसे पिंजड़े का। What is the use of this kind of a body in which the soul is crying, starving? Kya fayda? Aise sharir ka jiske andar ki atma, jo ruh hamare andar ka, wo bhuka pyasa tadap raha hai. Isliye Srila Prabhupada इस श्लोक के तात्पर्य में कहते हैं, बचाना किसको चाहिए? वो उदाहरण दिए हैं कि कोई समुद्र में डूब रहा है. श्री प्रभुपाद उदाहरण दिए, समुद्र में डूब रहा है और आप तैरना जानते हैं और आप देख लिए कि वो डूब रहा है. कई बार समझ में नहीं आता है, लोग लगता है कि खेल रहा है, लेकिन समझ गया कि वो डूब रहा है, वो चिल्ला रहा है बचाओ बचाओ, और आप तैरना जानते हैं. और कैसा, कैसे आप तैराक हैं, जैसे कोई लाइफ गार्ड होता है. तो आप तैर के गए और वहां पर वो व्यक्ति बेचारा अब बस डूबने जाने वाला है, तो आपने पकड़ा, उसने कोट पहना हुआ है. रूपाधी उदाहरण दिया, उसने कोट पहना हुआ है, आपने उसका कोट निकाला, रेमंड्स का है, लेके आ गए, फिर कोट लेके आ गए बचा के. कैसा लगा आपको? वो गया बेचारा, डूब गए वो, अरे तो कोट बचा है ना. तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, मटीरियल कंपैशन इज लाइक सिंपली सेविंग द कोट ऑफ अ ड्राउनिंग मैन. बहुत उपयुक्त उदाहरण है. अर्थात श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ये जो अर्जुन शोक यहां पर कर रहे हैं, किस लिए शोक कर रहे हैं? वो कोर्ट को बचाने के पीछे. इसलिए ये प्रश्न सबसे पहले हमें पूछना चाहिए कि बचाना किसे है. अब इसका अर्थ ये नहीं कि उसका कोर्ट वोट निकाल के उसको नंगा लेके आओ, नहीं, कोर्ट के साथ उसको बचाओ, अर्थात उसका शरीर भी बचाओ, परंतु शरीर के साथ उसका आत्मा जो सबसे जरूरी है बचाना, उसे भी बचाओ. इसलिए भगवत गीता का जो ज्ञान है वो बैलेंस्ड अप्रोच है, कोई एक्सट्रीम नहीं कि केवल शरीर 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 या केवल आत्मा आत्मा आत्मा, नहीं, वो दोनों. भगवान कहें युक्ताहार विहारस्य, कि सब कुछ युक्त होना चाहिए, सब कुछ संतुलित होना चाहिए, बैलेंस्ड अप्रोच. इसलिए यहां पर अर्जुन के जो आंसू हैं, अश्रु पूर्णा कुले क्षणम, बताए गए कि दो प्रकार के आंसू होते हैं, हर्ष और शोक के अश्रु होते हैं. ये श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद में इसकी व्याख्या की गई है कि जब किसी के आंसू ठंडे आंसू होते हैं, उसका टेम्परेचर ठंडा होता है, अर्थात वो खुशी के आंसू हैं. कई बार लोग खुशी में भी रोना शुरू करते हैं ना आंखों से, कई बार आंखों में कचरा जाता फिर भी आंसू आ जाते हैं, वो दूसरी बात है. और एक शोक के कारण, तो शोक के कारण जो अश्रु आते हैं वो गर्म, उसका टेम्परेचर गर्म रहता है. तो यदि किसी के आंसू का टेम्परेचर चेक कर लो तो समझ में आ जाएगा कि क्यों रोया वो. कोई व्यक्ति खुशी के कारण, कोई व्यक्ति खुद खुशी के कारण. तो यहां पर अब अर्जुन जो अश्रु पूर्ण कुले क्षणम, क्या टेम्परेचर होगा? ठंडा गरम बीच का निवाया. गरम शोक के कारण, शोक संविघ्न है, शोक के कारण. इसलिए अर्जुन के जो अश्रु हैं, आंसू हैं, वो शोक के कारण गरम है. तो हम कुछ उदाहरण अब भागवत से लेंगे जहां पर भक्तों ने, व्यक्तियों ने अश्रु प्रवाहित किए हैं और किस प्रकार के वो अश्रु थे. सबसे पहले प्रथम स्कंद में नारद मुनि, नारद मुनि का उदाहरण है श्रीमद् भागवत में कि नारद मुनि ने जब भगवान का दर्शन किया. अब छोटे से नारद मुनि, उनकी माता, उनका देहांत हुआ और नारद मुनि भगवान की भक्ति करते हुए इतनी तीव्र भक्ति की कि भगवान ने कुछ क्षणों के लिए नारद मुनि को दर्शन दिया. भगवान का दर्शन करने मात्र से नारद मुनि की आंखों से आंसू बहना शुरू हुए। तो यहां पर नारद मुनि की आंखों से जो आंसू बहना शुरू हुए वो हर्ष के आंसू थे। तो ये भागवत के पहले स्कंद में नारद मुनि का वर्णन है। फिर आगे जो हस्तिनापुर की स्त्रियां, जब भगवान हस्तिनापुर से द्वारका जा रहे थे तो हस्तिनापुर की स्त्रियां, कभी हमने सुना भी नहीं, हस्तिनापुर की स्त्रियां भी भगवान की इतनी अनन्य भक्त थी, तो वो रोने लगी भगवान को जाता देख, कुंती महारानी भी, तो वो आंसू शोक के, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ गया। अब द्वारका की जो माताएं, जब भगवान द्वारका पहुंचे तो वहां पर केवल देवकी नहीं बल्कि और भी देवकी के हम उम्र की माताएं वो भगवान श्री कृष्ण को अपना स्तनपान उस समय से कराना चाहती थी। और अब भगवान तो इतने बड़े हो गए, परंतु देवकी ने जैसे ही भगवान को, और अन्य माताओं ने भी जैसे भगवान को देखा, तो उनके स्तनों से दूध चुचुआने लगा। और इनको आश्चर्यचकित हुआ कि इस समय भी, अब उस अवस्था में, वृद्ध अवस्था में, इनके स्तनों से दूध आ रहा था, वो वात्सल्य प्रेम उनका, और आंखों से अश्रु। परंतु वो अश्रु कौन से थे? हर्ष के अश्रु थे, द्वारका की माताएं, भगवान की रानियां। भगवान की रानियां, कई बार भगवान इतना व्यस्त रहते द्वारकाधीश, तो भगवान इतना व्यस्त रहते द्वारकाधीश के रूप में कि भगवान की पटरानियां अपने कक्ष में भगवान के विषय में सोच सोच कर आंखों से आंसू आते। तो ये कौन से आंसू थे इनके? ये मिश्रित थे, भगवान का ध्यान करते हुए थोड़े गर्म थोड़े ठंडे, थोड़े मिश्रित आंसू थे इनके, गर्म ठंडा दोनों, ठंडा गर्म होता है ना, ठंडा गर्म वैसे। और अर्जुन जब भगवान से मिलने द्वारका गए, ये सब युद्ध के पश्चात की बात है, और फिर अर्जुन बहुत समय तक लौटे नहीं फिर से हस्तिनापुर, तो युधिष्ठिर महाराज चिंतित थे। तो युधिष्ठिर महाराज अर्जुन को देखे, और युधिष्ठिर महाराज ने कई सारे अपशकुन भी देखे, परंतु जब अर्जुन फिर से आए लौट कर द्वारका से ये समाचार सुनाने के लिए कि भगवान चले गए, भगवान अपने धाम चले गए, लौट गए, प्रस्थान कर गए, तो युधिष्ठिर महाराज को कैसे समझ में आया? अर्जुन के अश्रुओं को स्पर्श कर। अर्जुन जो रोने लगे तो युधिष्ठिर महाराज ने आलिंगन किया, और जैसे युधिष्ठिर महाराज के कंधे पर अर्जुन के गरम अश्रु, हालांकि अर्जुन इतने कोमल हृदय के थे कि भगवान श्री कृष्ण के विषय में सोचते ही अर्जुन रोने लगते, तो युधिष्ठिर महाराज समझ जाते हो टेम्परेचर से कि ये खुश खबर है या कोई दुखद समाचार। तो जैसे ही युधिष्ठिर महाराज के कंधों पर अर्जुन के टप 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 गरम अश्रु गिरे, युधिष्ठिर महाराज समझ गए, देखिए भगवान अपने धाम चले गए केवल अश्रुओं को स्पर्श करने मात्र से। ये है पहले स्कंद का एक और उदाहरण। अब तीसरे स्कंद में उदाहरण है जब विदुर वो उद्धव से मिलते हैं और उद्धव से भगवत कथा सुनना चाहते हैं, तो जैसे ही भगवान के विषय में उद्धव जी ध्यान करते हैं तो आंखों से आंसू। तो इस श्लोक में बताया गया है कि वियोग के आंसू, तो ये शोक के आंसू, गरम आंसू, ये उद्धव जी की आंखों से बाहर आते हैं। अब ये बहुत ही सुंदर वर्णन है चतुर्थ स्कंद में, पृथु महाराज अपनी तपस्या से, अपनी भक्ति से भगवान को आह्वान देते हैं और भगवान आते हैं, भगवान श्री विष्णु गरुड़ पर आरूढ़। और पृथु महाराज की भक्ति इतनी तीव्र, इतनी गहरी पृथु महाराज की भक्ति कि भगवान अक्सर अपने गरुड़ पर ही रहते हैं, और भगवान नीचे भी उतरते हैं तो देवता भी, भगवान तो छोड़ दीजिए, देवता भी कभी पृथ्वी को स्पर्श नहीं करते जब वो आते हैं, वो थोड़ा ऊपर ही रहते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी उनके स्पर्श करने लायक भी नहीं, तो स्पर्श नहीं करते, ऊपर ही रहते हैं। तो पृथु महाराज ने जब भगवान का दर्शन किया तो पृथु महाराज रोने लगे, और ये हर्ष के आंसू, इतने हर्षित पृथु महाराज रोने लगे, तो पृथु महाराज के आंसुओं को देख के भगवान रोने लगे, और भगवान रोने लगे, पृथु महाराज रोने लगे, और आंसुओं की वजह से दोनों एक दूसरे को देख नहीं पा रहे, तो भगवान का पैर नीचे टिक गया, जो कि भगवान उस समय पैर नीचे नहीं टिकाते कभी, तो भगवान का पैर नीचे टिक गया, और पैर नीचे टिक गया तो भगवान डगमगाने लगे, मानो भगवान अभी गिरने वाले, आदत नहीं है पृथ्वी पर ज्यादा चलने की। तो ये बहुत सुंदर वर्णन है चतुर्स्कंध में, भगवान जब गिरने लगे तो गरुड़ जी का सहारा लिया, अपने आप को संभाला। अर्थात सुखदेव गोस्वामी हमारे सामने ऐसा चित्र प्रस्तुत कर रहे हैं कि एक भक्त और भगवान के बीच में जो आदान प्रदान होता है आंसुओं का, तो पृथु महाराज अपने आप को कोसने लगे कि धिक्कार है ऐसे आंसुओं को जो मेरी सेवा के बीच में आ रहे, भगवान का रूप नहीं देख पा रहा मैं। अर्थात हम लोग सब जो इतना दौड़ धूप कर रहे हैं ये सब अष्ट विकार लाने के लिए, कब नेत्रों से आंसू आएंगे भगवान का नाम लेते हुए, दूसरी तरीके से दिव्य प्रेम के वजह से। यहां पर एक भक्त, उनका उद्गार क्या है, एक भक्त का उद्गार है कि यदि ये मेरे अष्ट विकार भगवान की सेवा में बाधा ला रहे हैं तो टू हेल विद दीज एक्सटेसीज, भगवान की सेवा में बाधा नहीं आनी चाहिए, धिक्कार हो ये मेरे आंसुओं पर। देखिए ये उनकी स्थिति है। तो ये चतुर्स्कंध में पृथु महाराज और भगवान का आदान प्रदान बताया गया है। प्रहलाद महाराज सातवें स्कंध में, प्रहलाद महाराज जब अपने, अभी तक नरसिंह भगवान अवतरित भी नहीं हुए, प्रहलाद महाराज वो अपने सहपाठियों को जब भगवान के बारे में बताते तो आंसू भरे हुए आंसुओं से वो भगवान के विषय में बताते, तो सारे सहपाठी भी प्रहलाद महाराज को जब देखते कि इतना सा, ये हमारे ही उम्र का, परंतु ये तो रो क्यों रहा है, परंतु प्रहलाद महाराज का स्तर इतना ऊंचा कि भगवान, और भगवान को देखा नहीं अभी तक, गर्भ में केवल नारद मुनि के मुख से सुना भगवान के बारे में, बस वो श्रवण किया, और प्रहलाद महाराज का ऐसा भाव। तो प्रहलाद महाराज का उदाहरण सातवें स्कंद में, आठवें स्कंद में माता अदिति ने जो पयोव्रत किया और जिसकी वजह से भगवान श्री विष्णु अवतरित हुए, तो आठवें स्कंद में माता अदिति, उनके आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए। और फिर आठवें स्कंद में है बलि एवं प्रहलाद महाराज, जब बलि महाराज ने अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया वामन देव को, तो वामन देव ने बलि महाराज को बंदी बनाया कि तुमने तीन पग भूमि बोली थी तुम नहीं दे पाए, दो पग में मैंने सब कुछ ले लिया, तो भगवान प्रेम के रूप में बंदी बनाए। तब प्रहलाद महाराज वहां पर आए, तो प्रहलाद महाराज वहां पर, अब प्रहलाद महाराज कौन है, बलि महाराज के दादाजी हैं, तो दादाजी आए, तो दादाजी ने देखा कि मेरे पोते को भी भगवान विष्णु की कृपा मिली है, तो प्रहलाद महाराज रोने लगे, बलि महाराज रोने लगे, और स्वयं भगवान रोने लगे। एक राधा और कृष्ण की एक लीला है जिसमें इसे भक्ति का एक बहुत ही ऊंचा भाव बताया गया है, प्रेम वैचित्य। प्रेम वैचित्य नाम ही देखे बहुत लोडेड है। तो इसमें यह घटना ऐसी हुई कि राधा और कृष्ण, राधे श्याम, वो बैठे हुए थे वटवृक्ष के नीचे, और एक भंवरा वो आकर वो मंडरा रहा था, तो वो श्रीमती राधा रानी के मुखमंडल की ओर मंडरा रहा था, और फिर श्री श्याम के मुखमंडल की ओर। तो राधा रानी ने सुबल को बुलाया और कहा कि भंवरे को दूर करो। तो सुबल भंवरे को दूर कर दिए और आकर सुबल राधा रानी से कहता है, मधु चला गया। अब मधु भगवान का एक नाम, तो राधा रानी वहीं बैठी बगल में, भगवान हैं, और बस ये सुना कि मधु चले गए, राधा रानी रोने लगी वियोग में, विप्रलंब में राधा रानी रोने लगी। और राधा रानी को रोता देख भगवान रोने लगे, तो दोनों राधे श्याम रो रहे हैं और उनके आंसुओं से एक सरोवर बन गया बगल में, प्रेम सरोवर। एक सर आज भी ब्रजमंडल में है, प्रेम सरोवर, जो राधा और कृष्ण के आंसुओं से ये बना हुआ बरसाना में, प्रेम सरोवर। तो इसलिए अश्रु प्रवाहित होना यह कोई बुरी बात नहीं है, परंतु यहां पर अर्जुन जो अश्रु पूर्ण कुलेक्षणम संजय बता रहे हैं, वो अश्रु जो है वो शिल प्रभुपाद के अनुसार तमोगुण के अश्रु हैं, लैमेंटेशन इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस। क्यों? खाली कोर्ट के पीछे, कोर्ट के पीछे रो रहा है। तो मानो कि कोई व्यक्ति मरा और उसके सगे संबंधी रो रहे हैं, अरे हमारा कोर्ट चला गया, रेमंड्स का था, कितना खर्चा किया था, पिछली दिवाली को ही लाया था, अरे जो कोट पहना हुआ है वो, उसके विषय में। तो ऐसे कोई यदि विलाप कर रहा है केवल किसी के वस्त्र के बारे में, तो वो विलाप तमोगुण के अधीन है वो विलाप। परंतु आत्मा के स्तर पर जो विलाप किया जाता है, वो आत्मा शुद्ध स्तर, वो विलाप शुद्ध स्तर पर कहा जाता है। इसलिए यहां पर संजय ये दो श्लोकों में अर्जुन के विलाप को भगवान के द्वारा उद्धृत कर बताएंगे कि ये विलाप भौतिक है, ये आध्यात्मिक नहीं, ये अश्रु जो हैं अर्जुन के, ये दिव्य प्रेमाश्रु नहीं है बल्कि शोकाश्रु है। इसलिए श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद में बताया जाए कि अर्जुन के ही तरह हम सब जीव इस भौतिक संसार में शोकाश्रु सागरात, एक शोक अश्रु के सागर में डूब रहे हैं। और कहा गया है कि भगवान के सुंदर मुस्कान को यदि कोई देख ले तो ये सारा जो शोक अश्रु का सागर है उच्छोषणम, ये सब कुछ वाष्प में परिवर्तित होकर चला जाता है, केवल भगवान के सुंदर मुखमंडल को कोई देख ले अपनी आंखों से। अब मधुसूदन इस शब्द से संजय भगवान को उल्लेख कर रहे हैं। तो मधुसूदन की व्याख्या यहां पर क्या है? सबसे पहले मानो संजय ये बता रहे हैं कि मधुसूदन का अर्थ है मधुर व्यवहार का निवारण करने वाले, मतलब मधुर व्यवहार को खत्म करने वाले मधुसूदन। सूदन का अर्थ होता है मारना, भगवान ने मधु नामक एक राक्षस को भी मारा था, तो यहां पर मधुर व्यवहार को मारने वाले हैं मधुसूदन। अब आप लोग पूछोगे कि भाई वो तो मधुर व्यवहार को पैदा करने वाले होने चाहिए, तो ये मधुर व्यवहार को मारने वाले कैसे बन गए? क्यों संजय मधुसूदन बोल रहे हैं भगवान को यहां पर? क्योंकि जो अर्जुन मधुर व्यवहार जता रहे हैं अपना, किसके प्रति? कौरवों के प्रति जो मधुर व्यवहार जता रहे हैं, इस मधुर व्यवहार को मारने वाले हैं अभी भगवान, ये दूसरे अध्याय में। तो अर्जुन के ये तथा कथित मधुर व्यवहार का सूदन करने वाले मधुसूदन, समझ में आए? अब इसकी हमने चर्चा की कि जो हम शोक अश्रु सागर में डूब रहे हैं, भगवान के मधुर मुस्कान को पर ध्यान करें, तो भगवान ने गीता सुनाई मुस्कुराते हुए। भगवान ने गीता टेंशन में नहीं सुनाएगी, अरे जो मेन प्लेयर है वही जा रहा है, टीम का मेन प्लेयर अर्जुन, उसने बैट रख दिया नीचे। नहीं, भगवान को ऐसी चिंता नहीं, भगवान मुस्कुराते हुए गीता सुना रहे थे, अर्थात भगवान जानते थे। और इसलिए महाभारत में यह भी वर्णन है कि महाभारत में कुछ ऐसे शत्रु जो अर्जुन के सामने आते और अर्जुन को भगवान थोड़ा थका देखते तो भगवान वो शत्रु मुस्कुरा देते, तो शत्रु भगवान की मुस्कान को देखते स्तब्ध हो जाते, तो अर्जुन को ज्यादा कोई कठिनाई नहीं होती मारने। अर्जुन अचानक सोचते कि ये मारते मारते खड़ा क्यों हो गया, ऐसे मार क्यों नहीं रहा है, क्योंकि अर्जुन को भगवान की मुस्कान तो नहीं दिख रही थी। तो अचानक भगवान अब चला रहे हैं, रथ चला रहे हैं, सामने कोई ऐसा योद्धा आ गया। अब भगवान चाहते हैं कि अर्जुन को ज्यादा कठिनाई नहीं होनी, तो भगवान एक स्माइल मार देते, और वो भगवान की मुस्कान को देखकर वहीं पे स्तब्ध, और अर्जुन आश्चर्यचकित। वो स्तब्ध अर्जुन आश्चर्यचकित कि अरे कुछ मारो, तीर चला के खत्म। तो भगवान के दो कारण थे, एक तो अर्जुन को थोड़ा रिलैक्सेशन देना, और दूसरा वो मेरे मुस्कान को देखते हुए मरेगा तो उसके सारे जीवन के जन्म जन्मांतर के शोक नष्ट हो जाएंगे। और अंतिम कारण, इतने सारे जो संशय अर्जुन ने रखे वो मधु नामक दैत्य के समान थे, वो मधु नामक राक्षस के समान थे जिनका सूदन अब मधुसूदन करने वाले हैं। इसलिए यहां पर संजय ये तीन कारणों के वजह से भगवान को मधुसूदन नाम से पुकार रहे हैं। तो ये जो दो श्लोक संजय के बहुत महत्वपूर्ण हैं, पिछले अध्याय का अंतिम श्लोक और इस अध्याय का प्रथम श्लोक, जिसमें अब पूर्ण रूपेण जो शोक से संविग्न अर्जुन की परिस्थिति, अश्रुपूर्ण कुलेक्षण ऐसी परिस्थिति बताते हुए अब अगला श्लोक है श्री भगवान उवाच, जिसकी चर्चा होगी अगले बुधवार को। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न?
हरे कृष्ण। सबसे पहले तो बताना चाहूंगा कि पिछले बुधवार को हमने एक विश्व मंगल गोग्राम यात्रा के बारे में प्रभु जी ने कहा था, तो उसके बारे में बहुत से भक्तों ने साइन देने के लिए तैयार थे, तो यहाँ पे रिसेप्शन काउंटर पर ये पेजेस रखे जाएंगे, तो कृपया करके सभी भक्त यहाँ जिन्हें साइन देना है उन्होंने अपना नाम और सिग्नेचर वहाँ पे करना है। वहाँ पे हमारे एक भक्त बैठे रहेंगे। दूसरी
नहीं,
सूचना,
ये किसके बारे में बता? ये जो सिग्नेचर है ये गोरक्षा और गो माता के विषय में जागरूकता फैलाने के लिए जो यात्रा निकली हुई है कुरुक्षेत्र से, तो उसके संदर्भ में है। इसलिए आप लोग ये जान लीजिए कि ये जो सिग्नेचर है, ऐसा कोई कोई पॉलिटिकल रैली नहीं है, ये भगवान श्री कृष्ण के जो प्रिय गौ माता है उनकी रक्षा हेतु ये सब आपके स्वाक्षरी आपको देना है। हाँ?
उसके पैम्पलेट्स भी वहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। और जैसे कि हमें पता है कि आने वाले 30, 31 और 1 तारीख को हम हरे कृष्णा उत्सव नासिक रोड मनाने जाने वाले हैं, तो सभी भक्तों से और एक बार नम्र निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों को वहाँ पे बुलाएं, लोगों को वहाँ पे बुलाएं और उस कार्यक्रम को आमंत्रित करें। और इसके जो पैम्पलेट्स हैं वो अकाउंट डिपार्टमेंट या बुक स्टॉल पे उपलब्ध हैं, तो कृपया करके जो भक्तों को किसी को आमंत्रित करना है तो कृपया करके वो पैम्पलेट्स वो दे सकते हैं। और जैसे कि 30, 31 और 1 का प्रोग्राम है, इसलिए जो शनिवार का कलंत्री प्रभु जी का यहाँ का जो सौजन्य मंगला का जो प्रोग्राम है वो नहीं होगा, और यहाँ का जो संडे फीस्ट प्रोग्राम है वो भी इस रविवार के लिए नहीं होगा, अगले रविवार यहीं पे होगा। हरे कृष्ण।
और दो तारीख को हम गोवर्धन पूजा मना रहे हैं, जो कि हम